चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। पञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण नाम्ने गौरत्विषे। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरयाजिः पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमामतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। आज व्यास पूजा का अधिवास है। भारतीय वाङ्मय में, भारतीय साहित्य में व्यास जी को निकाल दिया जाए तो जीरो हो जाएगा, शून्य रह जाएगा। जिन्होंने वेदों का चार विभाग किया, नहीं तो वेद लुप्त होने की संभावना थी। जिन लोगों को वेदों में अधिकार नहीं था, उन लोगों के लिए वेदों का सहार कहानियों के रूप में, महाभारत के रूप में लिखा, जिसमें सबका अधिकार हो। इसके बाद में उन्होंने 18 पुराण, 18 उप पुराण, 18 शाखा पुराण, ये पुराणों को उन्होंने लिखा, प्रकाशित किया। उन्होंने महाभारत में 18 अध्याय दिए भीष्म पर्व का, जो गीता के नाम से प्रसिद्ध है, जो उपनिषदों का सार है। वेद में बहुत से विभाग हैं जिसमें उपनिषद एक है, और समस्त वेदों का सार श्रीमद् भागवत का जिन्होंने प्रकाश किया, जिनके बिना उनका सारा साहित्य अधूरा था, उन्होंने लिखा। उन्होंने वेदों का विभाग कर चारों भागों को वैशंपायन, पैल, सुमंत, जैमिनी इत्यादि को पढ़ाया। इसका रिक्त उन्होंने लोमहर्षण सूत को, उन्होंने सारे पुराणों की शिक्षा दी, जिन्होंने सुखदेव गोस्वामी को, निवृत्त पारायण थे, अपने पुत्र और शिष्य, उनको विशेष रूप से समस्त वेद, उपनिषद, शास्त्र, पुराण, रामायण जितना था उसका सार श्रीमद् भागवत लिख करके उन्हें पढ़ाया, और उनको अपने सामने, अपने नीचे श्रोता के आसन पर बैठकर अपने बेटे और शिष्य को अपनी गद्दी पर, व्यास गद्दी पर बैठा करके 18,000 ऋषियों को उनके सामने सुखदेव गोस्वामी को भागवत को सुनवाया अपने सामने। हो सकता है कि उसके बाद में उन्होंने वो बद्रिकाश्रम के नीचे द्वार हरिद्वार में सनक सनंदन सनातन के द्वारा इसी भागवत का 300 वर्षों के बाद में या कितने दिनों के बाद में उन्होंने नारद जी को सुनवाया। उस सभा में भी बैठे होंगे, उसको भी उन्होंने संकलन किए और फिर 88,000 ऋषियों के समय सुत गोस्वामी के द्वारा उसका फिर पाठ करवाया और उसमें भी श्रोता के रूप में बैठ करके उसको भी उस श्रीमद् भागवत में जोड़ दिया। इस तरह से व्यास जी ने चतुर्श्लोकी भागवत से आरंभ कर 18,000 श्लोकों वाली भागवत को उन्होंने प्रकाशित किया और जगत में कृष्ण के जाने के बाद में सूर्य के समान इस भागवत को रखा और ये श्रीमद् भागवत कृष्ण का स्वरूप है। जब तक जगत रहेगा तब से जगत का कल्याण होगा। ऐसे जो व्यास जी हैं जो भगवान का विस्तार करने वाले हैं वो व्यास जी का कल जन्म दिवस है। इसी पूर्णिमा को, कल की पूर्णिमा को व्यास किसको कहते हैं अंग्रेजी में किसको कहते हैं भाई व्यास?
डायमीटर।
किसी केंद्र का, किसी सर्किल का, किसी सर्किल का वह बीज का भाग जो प्रत्येक बिंदु को समान रूप में स्पर्श करता है वह मध्य बिंदु जो समान दूरी पर सब कुछ है, वैसे अखिल विश्व में का केंद्र बिंदु ये व्यास जी हैं जो कृष्ण की लीला कथाओं का, उनके ज्ञान का, भक्ति का, सब कुछ का ये विश्व में सर्वत्र प्रचार करते हैं, उनको बढ़ाते हैं, विस्तार करते हैं, सबके हृदय में बैठाते हैं। उनका नाम ये कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। इसके संबंध में आज हम लोग कुछ विचार करेंगे और व्यास जी का कुछ अद्भुत जो चरित्र है क्यों हम उनकी पूजा करनी चाहिए, किस रूप में उनकी पूजा करनी चाहिए, इसके संबंध में हम लोग आज कुछ बतलाएंगे और कल सवेरे 9 बजे से हम लोग यहीं पर उनके चरणों में पुष्पांजलि देंगे। पुष्पांजलि का तात्पर्य ही क्या है इसको हम लोग भी बतलाएंगे, कैसे पुष्पांजलि दी जाती है, व्यास की पूजा कैसी होती है, इसके संबंध में भी हम लोग बतलाएंगे। केवल पुष्प अर्पण से नहीं, उनके जीवन का क्या वैशिष्ट्य था इसके संबंध में भी हम लोग कुछ कुछ बतलाएंगे। पहले आज हम जो अमेरिका में प्रचार में हम लोग गए थे, ह्यूस्टन एक शहर है, ह्यूस्टन वहां पर गए थे, वहां की सारी व्यवस्था, इंतजाम व्यवस्था हमारे सामने जो बैठा ये विष्णुदास जी हैं, बड़े योग्य आदमी हैं, बहुत बड़ा प्रबंधक भी है, व्यवस्थापक भी है। हम सोच रहे हैं जैसा प्रचार विश्व में हो रहा है इसकी व्यवस्था इतने व्यापक रूप में कौन करेगा भविष्य में, तो मैं वहां इसकी व्यवस्था देकर के मैं बहुत प्रसन्न हुआ। मन ही मन में सोचा भाई ऐसा कोई व्यवस्थापक होना चाहिए जो इसको अच्छी तरह से व्यवस्था कर सके, देश विदेश में सारी जगह व्यवस्थापक व्यवस्था का काम कर सके। तो वहां पर बड़ी खूबी के साथ में इसने अकेले, पहले अकेले था, स्कूल वालों ने भरोसा दिया महाराज जी को बुलाओ कोई बात नहीं, और जब मैं जाने का एक दो दिन पहले कह दिया जी नहीं महाराज जी नहीं आएंगे, कोई सहयोग मत दो, तुम भी उनके पास में मत जाओ, किंतु अकेले हिमालय की तरफ में अटल अढ़ल रहकर उनकी बातों की परवाह नहीं कर, और कैसी सुंदर सब व्यवस्थाएं की जिसे चारों तरफ में हमारा प्रचार बहुत सुंदर रूप से हुआ। अमेरिका में हमारे प्रचार का मील पत्थर वो ह्यूस्टन रहा, और वहीं से सर्वत्र हम लोग प्रचार करते 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 फिर हम लोग वहां से कनाडा और पहले भी आए। कैसा प्रचार हुआ, हमारे प्रचार का क्या छाप वहां पर पड़ा, संक्षेप में ये कुछ बतलाएंगे। इसके बाद में हम व्यास पूजा के संबंध में हम यहां पर खड़े हो जाओ, तुम जाओ वहां पर खड़े हो।
मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाराज जी के अमेरिका के टूर के लिए महाराज भले ही मुझे उसका कहें कि मैंने उसके लिए कुछ किया है, लेकिन वास्तव में जो सत्य है वो यही है कि महाराज की स्वयं की शक्ति थी जिसने सब कुछ करवाया। क्योंकि मेरे जैसा एक तुच्छ जीव में इतनी शक्ति नहीं कि एक महापुरुष की ऐसी सेवा कर सके, ये तो भगवान का और महाराज का स्वयं की शक्ति थी जिससे इतना बड़ा काम हुआ। वास्तव में सच में तो मैं तो इतना अधिक घबरा गया था, क्योंकि शुरू में तो प्रबंध कर रहे थे हम लोग, लेकिन बड़ी लंबी कहानी है, स्कॉन वालों ने बहुत तंग करना शुरू कर दिया, और जहां जहां पे कार्यक्रम रखे थे उन्होंने उनको फोन करके सब कैंसिल कराने की कोशिश की, और महाराज जी के खिलाफ बहुत बोलना शुरू किया। तो थोड़ी मैं शायद डर गया कि लोग शायद कैंसिल कर देंगे सारे प्रोग्राम्स, लेकिन महाराज की ऐसा कुछ शक्ति थी कि सबने कैंसिल करने से मना कर दिया, और सबने कहा कि हम तो कार्यक्रम रखेंगे। ऐसे ऐसे कई बातें हुई, जैसे वहां पे एक गुजराती समाज है जो कि बहुत बड़ी वहां की एक सोसाइटी है, उनका एक बहुत बड़ा हॉल है, और उस हॉल का किराया $2,000 है दो एक दिन के लिए, और वो कभी उसको मुफ्त नहीं देते, कभी भी नहीं मुफ्त देते। और मैंने बस एक बार उनको कहा कि मथुरा से एक बहुत उच्च कोटि के गौड़िया वैष्णव आ रहे हैं तो हम लोग भागवत कथा रखना चाहते हैं, तो उन्होंने बिना कुछ पूछे 4 दिन के लिए मुफ्त में वो हॉल दे दिया। तो मुफ्त $2,000 एक दिन का, ₹70,000 एक दिन का खर्चा, तो वो कभी नहीं देते हॉल। तो जिसको भी पता चला कि मुफ्त में दिया, तो उन्होंने कहा कि ऐसे कौन आ रहे हैं कि उनको बिना देखे उनके बिना पहचान उन लोगों ने मुफ्त में हॉल दिया। तो ये वास्तव में जिसके लिए भी मैंने फोन किया, जिसको भी फोन किया, जिनके घरों में भी कि महाराज जी आ रहे हैं आप क्या आपके घर पे वो ठहर सकते हैं, तो किसी को मालूम नहीं था महाराज के बारे में, लेकिन सब ने बिना पूछे बिना कुछ अधिक जानने की कोशिश किए बिना सब ने हामी भर दी। महाराज जी के आने से पहले जैसे वो बता रहे थे कि इस्कॉन वालों ने बहुत तंग किया, तो मुझे डर लगा कि इतने भक्त आएंगे तो उनका इंतजाम रहने का कैसे होगा, उनके खाने पीने का इंतजाम कैसे होगा। तो मैंने इंग्लैंड फोन करके पुंडरीक को नवीन कृष्ण प्रभु को कहा कि सबको कहो ह्यूस्टन कोई भी मत आए, खाली महाराज जी नवीन कृष्ण पुंडरीक और एक दो भक्त आ जाए, बाकी के सब लॉस एंजलस चले जाएं, क्योंकि ह्यूस्टन में ठहरने का कोई इंतजाम है। और मैं अकेला था तो खाने पीने का भी प्रसाद का कोई इंतजाम नहीं होगा, और वैष्णव भक्त आए और उनकी हम सेवा नहीं कर पाए तो मुझे हमेशा ग्लानि का अनुभव होता। तो मैंने बड़ी कोशिश की, भरसक प्रयत्न किया कि कोई ना आए, और सबने पहले कहा अच्छा हम नहीं आएंगे नहीं आएंगे। बुधवार को महाराज जी ने आना था, सोमवार तक मुझे कोई फोन नहीं आया कि कितने लोग आ रहे हैं, और मंगलवार सुबह से शाम तक एक के बाद एक फोन आए कि हम भी आ रहे हैं हम भी आ रहे हैं। कभी फ्रांस से फोन आए, कभी इंग्लैंड से फोन आए, कभी कोस्टारिका से फोन आए, कभी एरिजोना से, और एक के बजाय वो साथ साथ अपने को और को भी लेकर के आए। तो फिर मैंने कहा कि अब तो हथियार डालना पड़ेगा, जो होगा देखी जाएगी। तो जहां मैं कम करने की कोशिश कर रहा था, 25-30 भक्त महाराज के साथ आए, और उन्हीं की कुछ ऐसी कृपा है कि अपने आप ही लोग आगे आए। बड़े बड़े होटलों के जो मालिक थे वो लोग आए, उन्हें अपने मुफ्त कमरे दिए, लोगों ने प्रसाद बनाया खिलाया, और बिना कुछ मेरे किए अपने आप ही 12-14 दिन इतना अच्छा कार्यक्रम इतना आराम से चला। और जो भी महाराज से मिला पहली बार ही, उनकी आवाज सुनने से पहले भी उनको देखते ही लोगों के आंखों में आंसू आ जाते थे, और महाराज ने वास्तव में जैसे कृष्ण को जो देख लेता था उनकी बांसुरी सुनकर के कृष्ण उनका हृदय चुरा ले जाते थे। जिसने महाराज की वाणी सुनी, उनको देखा, उनके दर्शन किए, ऐसी अटूट छाप उनके हृदय पे पड़ी। आज तक लोग फोन कर करके हमें बोलते हैं कि हमने बड़े संत देखे हैं लेकिन उनके जैसा हमने कभी साधु सन्यासी नहीं देखा। तो लोग महाराज के प्रति उनको, कई लोगों ने, कुछ लोगों ने दीक्षा भी ली, कई लोगों ने अपने हृदय में गुरु रूप में धारण किया, और जैसा महाराज ने शिक्षा दी उसके अनुरूप वो लोग भजन कर रहे हैं। और उनकी बड़ी इच्छा है कि महाराज इसी तरह से आए। तो एक तो आप सबसे निवेदन है कि मुझे पता है कि आप लोगों का महाराज के प्रति बहुत प्रेम है, लेकिन असली प्रेम तब होगा जब हम महाराज को इतनी फैसिलिटी दें कि वो अब दुनिया भर में प्रचार कर सकें। वास्तव में अमेरिका है वो एक रेगिस्तान है, वहां पे प्रेम नाम की कोई चीज नहीं है। अब महाराज के हृदय में इतना प्रेम है कि उन्हीं के हृदय का प्रेम लोगों के अंदर भक्ति उगा सकता है। महाराज अभी कैलिफोर्निया पहुंचे भी नहीं थे तो वहां से मुझे फोन आते थे कि ऐसे ऐसे भक्त जो 20-20 साल हो गए उन्होंने माला नहीं उठाई, सिर्फ इसलिए कि नारायण महाराज जी कैलिफोर्निया आ रहे हैं, इसी उसमें उन्होंने माला जाप करनी शुरू कर दी है। तो उनके आने से पहले कई लोगों ने माला जाप करना, उनका इतना भक्ति में एंथुजियाज्म बढ़ गया, और जब महाराज गए तब तो कई 100-100 लोग, 200-250-400 लोग, और इतने इतने हजारों मील चल करके आए कारों में प्लेन्स में, और महाराज के पीछे पीछे जहां जिस सिटी में महाराज गए वो लोग गए अपने काम छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके 70-80 भक्त हमेशा महाराज जी के साथ जाते थे। तो इसलिए यहाँ पे तो महाराज की आवश्यकता है ही, लेकिन अब विश्व भर में महाराज की आवश्यकता है। तो अब हम लोग उनको, उनकी सेवा करें, उनको अधिक तकलीफ ना दें, जिससे वो और अधिक अब दुनिया में जाकर के, अभी बहुत देशों में भी जाकर के वहां पे भक्ति का प्रचार कर सकें। वहां पे और संस्थाओं ने मंदिर और मठ तो बना दिए हैं लेकिन वहां पे भक्ति का भाव नहीं है। अब महाराज जी की कृपा से वहां पे असली भक्ति का प्रचार होगा। तो बाकी जो वहां पे प्रचार हुआ उसको तो हम तो सोच रहे हैं बैठ करके एक पुस्तक लिखेंगे, क्योंकि इतनी बातें हुई कि उसको कुछ भी 2 मिनट में या 5 मिनट में बताना संभव है। तो हम कोशिश करके उस पर कुछ आर्टिकल्स लिखेंगे, एक किताब में उसको संकलित करेंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा, जिसको भी महाराज मिले वो प्रभावित हुए बिना नहीं रहा, और खाली जिसको भी महाराज ने कह दिया कि तुम जाप करो। एक लड़की थी जिनके पिताजी दीक्षित हैं, लेकिन वो कई महीनों से वहां जो हरे कृष्णा का मंदिर है नहीं जाती थी, इस्कॉन के मंदिर, उसको बड़ी चिढ़ थी। तो महाराज से मिलने आई तो महाराज ने उसको कहा कि तो हरि नाम जाप कर, और उसके हाथ में माला दी, और तब से उसने माला जाप करनी शुरू कर दी। ऐसे 5 मिनट भी जो महाराज जी से मिला उसके प्रभावित हुए बिना नहीं रहा। तो अब मैं और अधिक क्या करूं, उनके श्री चरणों में निवेदन है कि वो ऐसी कृपा वृष्टि अब सारे संसार में करें। अमेरिका और यूरोप तो थोड़ा थोड़ा तर गया है, अब दूसरे तरफ के देश हैं जिनको भी उनकी कृपा की जरूरत है। और वास्तव में वहां पे लोगों में बहुत श्रद्धा है। हम तो अपनी यहाँ भारतीय संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, लेकिन वहां पे महाराज जी, नवीन कृष्णपन, ये सब देख करके आए कि कैसे लोग अगर भागवत कथा चल रही है तो अपने काम छोड़कर के लोग शाम को आते हैं, सब सुनने आते हैं और बड़ी श्रद्धा से सुनते हैं, तो महाराज जी की कृपा से वहां पे और प्रचार बढ़े और यही हम लोगों का सबकी प्रार्थना है। हरे कृष्ण।
वो अभी किशोरी लड़की थी, शादी नहीं थी, पिता के आदेश से वो नौका में बिठाया और पार कर रही थी। बीच ही में एक टापू था जिसमें पेड़ उग रहे थे। ऋषि ने उसकी तरफ में कुछ अस्वाभाविक दृष्टि से देखा और देखते ही उसे गर्भ हुआ और उसे बच्चा पैदा हो गया। बच्चा हुआ 16 वर्ष का, श्याम वर्ण का, लंबा चौड़ा। ऋषि ने कहा, जे डरो मत, ये भगवान के अवतार हैं, अपनी इच्छा से अवतीर्ण हुए हैं। तुम्हारा कुमारी का व्रत ये खंडन नहीं होगा। तुम्हारा भारतवर्ष के सबसे बड़े राजा के साथ में तुम्हारी शादी होगी और तुम्हारा जस विश्व भर में फैलेगा। तुम भीष्म की पिता मैया तुम कहलाएगी। भीष्म जी उसके पेट से नहीं निकले हैं तो भी उनकी वो सौतेली मैया है, उसी से कौरवों का पांडवों का वंश हुआ है। उन्होंने कहा, जन्मते ही मैया तू चिंता मत कर, जब तुमको कोई जरूरत पड़े तो हमें बुला लेना। वही लड़का पीछे से वेदों का विभाग करने के लिए कारण वो कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास हुए और उनके संबंध में हम लोगों ने बतलाया। उनका जन्मदिवस भारतवर्ष में सभी जितने लोग हैं, आस्तिक लोग हैं, सभी लोग मनाते हैं, चाहे वो शंकर संप्रदाय के हों, रामानुज के, मध्वाचार्य के, विष्णु स्वामी, निम्बार्कर, निम्बादित्य, वल्लभ, सब प्रकार के जितने लोग हैं वो सर्व उनका जन्मतिथि मानते हैं। एक और बात, गोवर्धन की उस दिन परिक्रमा होती है, उससे क्या संबंध है इसका? इस पूर्णिमा को लोग मुड़िया पुनो कहते हैं। मुड़िया पुनो क्यों? सनातन गोस्वामी जी ब्रज के माने हुए संत थे। वे चैतन्य महाप्रभु के परिकर थे, बहुत से ग्रंथ लिखे हैं, वृंदावन में मदन मोहन के वही प्रतिष्ठित करने वाले थे, उनकी सेवा प्रकाश करने वाले। तो वो प्रतिदिन मथुरा से, वृंदावन से गोवर्धन जाते 16 मील और वहां से फिर 16 मील की 14 मील की परिक्रमा करते और फिर वहां से 16 मील चल करके पैदल मथुरा में आते और मथुरा में रोटी भिक्षा करके और फिर चले जाते वृंदावन में अपने आश्रम में और वहां जाकर के जमुना जल से उस रोटी को भिगाकर बिना नमक के, बिना किसी सब्जी के, और वहां पर उसको खाते। कभी वो नहीं मिलता तो कभी चना, कभी वो भी नहीं मना। दिन रात सोते नहीं थे, ग्रंथ लिखना, भगवान का नियमित रूप में नाम करना, प्रतिदिन वैष्णवों को और ब्रजभूमि के प्रत्येक स्थानों को साष्टांग प्रणाम करना, कभी भाव में भी हो करके हे राधे, हे ललिते, हे आप कहाँ हैं, कभी श्याम सुंदर आप कहाँ हैं, कभी नंदगांव में, कभी बरसाना में, कभी राधा कुंड श्याम कुंड में, कभी गोवर्धन में, कभी वृंदावन में, एक एक पेड़ के नीचे एक एक दिन रहते थे, एक एक रात अधिक दिन नहीं। और इस प्रकार से कभी सोना आध घंटा कभी सो लेते, कभी वो भी नहीं, इस तरह से भजन करते थे। चैतन्य महाप्रभु इनकी भक्ति से बड़े आकृष्ट थे। चैतन्य चैतामृत में इनका जीवन वर्णन परिक्रमा करते थे। जब काफी उम्र हो गई, जब परिक्रमा पूरा नहीं कर पाते तो भी दोपहर में परिक्रमा करते, जेठ की दोपहरी, पानी कहीं नहीं, गोवर्धन में मानसी गंगा, आज से 500 वर्ष पहले की बात, मानसी गंगा में पानी या कुसुम सरोवर में पानी या ऐसे कहीं कहीं पर पानी मिलता था, और वहां का पानी खारा सब कुओं का, बावरिया भी खारी, और दोपहर में चिलचिलाती हुई धूप में कहीं कोई छाया नहीं, और उसमें परिक्रमा देते 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 एक जगह आए, बस वहीं पर मूर्छित होकर के गिर पड़े। मैं समझता हूं कि वो प्यास से मूर्छित नहीं, धूप से मूर्छित नहीं, कृष्ण के विरह में। हम लोग तरह तरह की चटर पटर बातें करते हुए, कोई बीड़ी सिगरेट पीता हुआ, कोई संसार की चर्चा करता हुआ परिक्रमा करता है, और वो लोग क्या लीलाओं का दर्शन करने के लिए, कहां वो कंदरा है जहां पर कृष्ण ने क्रीड़ा की, कहां पर गैया चराई, कहां पर उन्होंने गोविंद कुंड पर उनका अभिषेक हुआ, कहां पर कौन कौन सी लीलाओं का चिंतन करते हुए, कृष्ण का अन्वेषण करते हुए उनको ढूंढते थे, ये है कृष्ण आप कहां है, ये परिक्रमा है। परिक्रमा नहीं कि इधर उधर की बातें करते हैं, कुछ मांगते हैं गोवर्धन से, ये नहीं। तो वहां पर कृष्ण और बलदेव जी वहां आए और अपने चादर को पीतांबर से उनकी छाया कर और कोमल हाथ उनके सिर पर रखा, पसीने अपने पूछने लगे, और उन्होंने आंख खोला दे करके एकदम कृतार्थ हो, कहेंगे देखो सनातन हमें कष्ट मत दो, तुम्हारे इस प्रकार से परिक्रमा करने में हमें कष्ट होता है, तुमको एक अपनी गोवर्धन शिला देते हैं, इसमें अपने दाहिने पैर का छाप दे देते हैं, और उसमें अपनी मुरली का भी छाप दे देते हैं, और उसमें एक गाय का खून का भी छाप देते हैं, गोचारण कर रहे हैं ना इसलिए गौआ का छाप, बंसी बजाते थे इसलिए उसका छाप, और अपने दाहिना पैर का छाप उसमें उन्होंने भर करके दे दिया, और सनातन गोस्वामी को कहा ले जाओ वृंदावन में, जाना ना उसी की, तुम तीन बार परिक्रमा करने से तुम्हारी गोवर्धन की परिक्रमा हो जाएगी, तुम्हारे सारे मनोरथ। उन्होंने कहा मनोरथ तो हमारा पूर्ण बाकी रह गया, जब आप ही के दर्शन हो गए, आपने इस प्रकार से हमारी सेवा सुशुषा की, हमारा सब मनोरथ पूर्ण हो गया। तभी वो गिरिराज जी को का वह शिला लेकर के वृंदावन में आए, जो कि अब वही शिला राधा दामोदर जयपुर में है, जयपुर में असल शिला, और उसका प्रतिभू विग्रह यहाँ पर राधा दामोदर मंदिर में है। जैसे राधा दामोदर जी असल वाले चले गए जो रूप गोस्वामी ने प्रकाश किया था, वो जयपुर में है, इसलिए उनका वह भी जो पत्थर सालग्राम उनका जो शिला थी वो भी वहां पर चली गई, और जिस प्रकार से राधा दामोदर जी का श्री विग्रह यहाँ पर प्रतिष्ठित है, प्रतिभू विग्रह कहते हैं, माने वही वैसा ही वो चरण चिन्ह भी यहाँ पर प्रकट है। आप लोग यदि जाएंगे तो देखेंगे, उसकी परिक्रमा करने से ही गोवर्धन की परिक्रमा हो जाती है, इसलिए अभी भी नियम है, बहुत से लोग जाते हैं तीन बार चार बार परिक्रमा उसकी कर लेते हैं राधा दामोदर समुद्र। तो आज ही के दिन वृंदावन में गोवर्धन की परिक्रमा करते 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 उन्होंने कृष्ण के लीला में प्रवेश किया था। आज ही के दिन वो लीला में प्रकट हो गए। दूसरी संसारिक भाषा में कहेंगे तो कहेंगे ये उन्होंने आज ही के दिन अपना शरीर छोड़ा था, किंतु उनका तो चिन्मय शरीर होता है, लोगों को दिखलाने के लिए वैसा उन्होंने किया, किंतु वो अपने प्रियतम कृष्ण के यहाँ कुंज सेवा कुंज में वहां पर वृंदावन में नित्य काल के लिए प्रवेश कर। सब वैष्णवों ने आज ही के दिन में जो गोवर्धन में उनके साथ में रहते थे उन लोगों ने मुंडन कराया और उनके उसको सी अंग को वहां से उनकी परिक्रमा की, और वह परिक्रमा करके उनका श्री अंग वृंदावन में लाया गया, और वृंदावन में उनकी समाधि है और उनका भजन कुटीर है। कहाँ है? राधा मदन मोहन जी के मंदिर के पास में जमुना के किनारे पर है। इसलिए जो परिक्रमा उनकी की, मुंडन किया, इसलिए मुड़िया पूर्ण हो गई, इसलिए आज भी वहां से बड़ी शोभा यात्रा निकलती है, हजारों वैष्णव लोग मस्तक मुंडन करके सनातन गोस्वामी की जय जयकार करते हुए, गिरिराज जी की जय जयकार करते हुए वहां पर मानसी गंगा की परिक्रमा करते हैं। वहां पर उनके भजन कुटीर है। जब वहां पर भजन करते थे, कभी कभी वहां रहते थे, तो रहते समय में मच्छर लगते थे। उन्होंने कहा ये है चकलेश्वर महादेव जी, मैं अब जा रहा हूं, यहाँ पर बहुत मच्छर काटते हैं। आप तो पत्थर के वेश में वहां पर, आपको तो मच्छर नहीं काटते किंतु हमको तो काटते हैं। जब जाने लगे तो शंकर जी निकल करके आ गए, पत्थर से निकल आए और निकल कर रहे, भाई भाई तुम हमारे मित्र हो, हमारे सखा हो, तुम मत जाना, तुम यहीं पर भजन करो, अब कल से आज ही से मच्छर नहीं आए। तब से 500 वर्ष तक मच्छर नहीं थे, किंतु अब न जाने क्या स्थिति में, नहीं जानता आजकल मच्छर लगते हैं कि नहीं, किंतु 500 वर्षों तक वहां पर मच्छर का नाम नहीं था। ऐसे सनातन गोस्वामी जी के लिए मूढ़िया पुनः होती है। किस प्रकार से व्यास जी की पूजा होती है, चैतन्य चैतामृत में दिया गया है। असल में व्यास पूजा का तात्पर्य है कृष्ण की पूजा। व्यास उनका विस्तार करते हैं और हमें जीवों को कृष्ण की सेवा की शिक्षा देते हैं। व्यास नहीं रहते तो हम कृष्ण की सेवा नहीं कर पाते, हम नहीं समझ पाते कि हम क्या हैं। हम लोग समझते मैं ब्रह्म हूं। बहुत से लोग हैं मथुरा में भी ऐसे हैं, हर वो काशी का रहने वाले थे, इधर में पहुंच गए, या हरिद्वार के थे, हम ब्रह्मास्मि यहां पर पहुंच करके इन्होंने आश्रम बनाया इत्यादि किया। किंतु असल में व्यास की पूजा माने कृष्ण की पूजा है। कृष्ण की पूजा जो सिखलाए, कृष्ण का एक चरणों की कानी अंगुली का नख की प्रभा को ब्रह्म कहते हैं। विस्तार से हम लोग समय, कल यदि समय होगा तो हम लोग बतलाने की चेष्टा करेंगे। आज रात हो गया, बहुत से लोगों के लिए असुविधा हो रही है, इसलिए व्यास जी के संबंध में बतलाएंगे। किंतु व्यास पूजा का ये तात्पर्य है, शिष्य यदि कृष्ण का भजन करता है और भजन की शिक्षा देने वाले गुरु जी के चरणों में अपने को न्योछावर करके तन मन वचन आत्मा सब प्रकार से सेवा, नानू और नचू नहीं कहता, नानू नचू माने क्या, ऐसा नहीं ऐसा, वो गुरु जी को शिक्षा नहीं देता, उनकी बातों को गुरु आज्ञा ही, यदि गुरु है तो, और गुरु नहीं है तो गुरु मत करो, छोड़ो। और यदि गुरु उसको मानते हो, समझते हो, उसके आचार से, विचार से, विद्या से, बुद्धि से और उसकी सेवा से, तो मैं इतना समझता हूं, उतना वो नहीं समझते, ऐसा मत लाओ मन में कभी भी, खबरदार। गुरु सेवा एकलव्य ने किया, किंतु वो सेवा सेवा नहीं थी, वो सेवा के बदले उसको क्या कहते हैं, गुरु द्रोही कहते हैं। गुरु के आदेश को नहीं माना, कहा मैं अधिक समझता हूं, मैं बाण विद्या उनसे सीखूंगा, जबरदस्ती गुरु बनाऊंगा, वो गुरु सेवक का आदर्श नहीं। उपनिषदों में जो उपमन्यु और अरुण इत्यादि की जो कथाएं हैं, उसमें गुरु भक्ति का लक्षण तो जरूर है, किंतु उसमें भक्ति का आदर्श कुछ नहीं। समस्त विद्याएं वेद की शबेस्त आ गई, उपनिषद की शिक्षा आई, अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि, किंतु भक्ति की उसमें नहीं आई। व्यास के जब ग्रंथ प्रकाशित हुए श्रीमद् भागवत, तो उसमें गुरु और शिष्य के जो विचार दिए गए हैं, सुदामा विप्र और कृष्ण ये शिष्य हैं। चैतन्य महाप्रभु आए, उसको और प्रकाशित किया, महाप्रभु जी के रूप और सनातन ये शिष्य हैं, ये मनोभीष्ट सेवक हैं। इसलिए गुरु की मनो की अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए तन से मन से वचन से जो सेवा की जाती है, वही व्यास पूजा या गुरु पूजा है, उसको कृष्ण ग्रहण करते हैं। कैसे करते हैं, इसके संबंध में हम लोग कल विस्तृत रूप से बोलने की चेष्टा करेंगे या परसों। आज यहीं सुबह हम समाप्त करते हैं, अभी कीर्तन करके हम लोग समाप्त करेंगे, और कल हम 9 बजे से यहाँ पर हम लोग पूजा आरम्भ करेंगे। मैं अपनी गुरु परम्परा की पूजा करूंगा, मैं
गुरु जी वहां पर बैठे होंगे, वो अपनी गुरु परंपरा की पूजा करेंगे, हम उनको सहायता करेंगे वस्तुओं को फूल चंदन इत्यादि दे करके, और गुरु जी पूजा करेंगे, हम लोग की गुरु पूजा करने के लिए समर्थ हैं, हम लोग उनको देंगे और वो अपने गुरु वर की पूजा करेंगे। जैसे कि अपने समय में हमने देखा है उनके समय में कैसे पूजा कराते थे, मुझे बुला लेते और कहते तुम पूजा कराओ, और वहीं चेयर लेकर के बैठ जाते और वहां पर सात पंचक, कृष्ण पंचक, आचार्य पंचक, गुरु पंचक, गुरु परंपरा पंचक, आचार्य पंचक, व्यास पंचक, तत्व पंचक, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु ने, ये सात पंचक माने सात पांच 35 घट स्थापित किए जाते और उनको वैदिक मंत्र से उन्हें पूत कर उसमें कलश में पानी देकर उसमें प्रतिष्ठा करके उनके 1650 से पूजा होती थी और कर करके तब फिर गुरु जी के चरणों में हम लोग पुष्पांजलि देते थे। यही विधि भक्ति विनोद ठाकुर जी ने वहां से पुरी से शंकर मठ से गोवर्धन मठ से उन्होंने प्रकाशित की, जो शंकर संप्रदाय में जो चालू थी, और उसमें करस्थन करके भक्त विनोद ठाकुर जी ने उसको लाया, प्रभुपाद ने भक्त हमारे गुरु जी को दिया और गुरु जी ने भागवत पत्रिका और गौड़ीय पत्रिका में उसका प्रकाशित किया है। बहुत वर्षों तक मैं नवदीप में जाकर के ऐसे ही पूजा करता था गुरु महाराज जी के समय में, उसके बाद में भी, किंतु जब यह मठ काफी बड़ा हो गया तो मुझको यहाँ पर रहना पड़ा, नहीं तो प्रति वर्ष मैं वहां पर जाता था। तो हम लोग संक्षेप में, उतना तो नहीं किंतु संक्षेप में, गुरु पूजा और परंपरा की पूजा करेंगे, कहाँ से कृष्ण से आरंभ करेंगे और वहां से नारद, वेदव्यास, सुखदेव गोस्वामी, मध्वाचार्य से लेकर के महाप्रभु और हमारे गुरु जी तक सारी पूजाएं। आप लोग भी ऐसा ही करेंगे, ऐसा ही पूजा यदि भजन मार्ग में प्रवेश करना है तो। आज संक्षेप में हमने कुछ बतलाया, चैतन्य महाप्रभु जी की पूजा नित्यानंद प्रभु जी ने की, नित्यानंद जी पूजा की बात हो रही थी और वो तब तक पूजा नहीं किया जब तक नहीं महाप्रभु आ गए, और महाप्रभु आए तो महाप्रभु जी ने श्रीपाद व्यास जी की पूजा क्यों नहीं कर रहे, कहे हूं अरे भाई कीजिए जल्दी से, हूं क्या कर रहे हूं। और महाप्रभु जब ही निकट आए व्यास पूजा की सारी माला लेकर के महाप्रभु के गले में उन्होंने पहना दी और सब भक्त गौर प्रमाण। इसलिए राधा कृष्ण की पूजा ही चैतन्य महाप्रभु की पूजा ही व्यास पूजा है, यही गुरु पूजा है, यही सब कुछ है। हाँ बोले लो बोलो तुम बोलो। हरे कृष्ण हरे